ओम शांति। आप क्या अभ्यास कर रहे हैं पहले तो, नहीं तो मुरली चालू हो जाएगी तो वो रह जाएगी। अच्छा आप बताओ, जो भी आप लोग कर रहे हैं सुबह दिन हर रोज यहाँ पर। यहाँ पर बैठ रहे हैं रोज पढ़ते हैं?
हाँ,
कभी कभी। हाँ उधर मतलब
ग्रुप में डेली बैठते हैं।
क्या पढ़ते हैं कि कुछ डिस्कस करते
हैं?
उसे के ऊपर डिस्कस करते
हैं।
अच्छा
तो पहले चल रहा था कि शक्ति की स्थापना करिए, उसके हिसाब से हम एक को सामने बैठाते और सबके एक एक हमें टाइटल्स दे रखे हैं, जिसको भी सामने हम बैठाते थे उसको एज ए सम्राट हम लोग देखते थे, और बाबा से शक्ति लेकर के हम एक होता योग में उससे ले हम उसको देते थे, और फिर लास्ट में बाबा का आह्वान करते, पहले बाबा का आह्वान ही करते थे, और अभी हम लोगों ने किया है कि एक यज्ञ की रचना की लुधियाने, तो उसमें कल से शुरू किया है हमने, तो उसमें जो भी हम सभी अपने को पूर्ण रूप से उसमें डाल देते हैं, अपने शरीर को डालते हैं और आत्मा में जो भी कमी कमजोरियां हैं बाबा से शक्ति लेकर उसको दिलाने का प्रयास करते हैं। इस मतलब इसमें भी अच्छा लग रहा है
इस सबको भैया, मतलब जैसे सूक्ष्म तन में इमर्ज करते हम चारों और बीच में अष्ट शक्तियों की अग्नि है, तो उसमें हम अपने को कंसिडर करते हैं कि हम पूरे के पूरे उस अग्नि में समा गए, फिर जितने भी उसमें कट चढ़ी हुई है किसी भी तरह की कोई भी विकार कमी कमजोरी, और फिर बाद में हम जितना भी हम कर पाए इफेक्ट क्रिएटिव अपने मन से, तो ये एक मतलब सीधा संकल्प है, फिर बाकी इसमें जितना भी वो कर पाए फिर उसमें से हम अपनी आत्मा को प्योरीफाई मतलब प्योर फॉर्म में देखते हैं, बिल्कुल चमकती उस तरीके से। बीच बीच में हम जैसे हमें सम्मान रखकर एक दूसरे से मिलते हैं उसी नजर से देखने की कोशिश करते हैं, बोल रहे की बात अगर कुछ चीजें से रोक जाए तो हम लोग का जो 8-10-15 का ग्रुप है मतलब ऐसे डायरेक्ट हम बोल भी देते हैं कि देखो भाई आपने मेरी प्रॉब्लम से, तो फिर किसी की बात आती लेकिन उसको हम जब एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं कि चलो आपने कुछ बताया तो उसको हम चेंज करते हैं।
सृष्टि की कयामत से पहले क्या करो? कल का वरदान, अपनी कमी और कमजोरियों की क्या करो? कयामत करो। सृष्टि की कयामत से पहले उलझन का नाम निशान ना हो,
उज्जवल
क्या हो जाओ? उज्जवल, उज्जवल हो जाओ। पुरानी बातें पुराने संस्कार समाप्त कर दो और उसकी अस्थियों को क्या करो?
संपूर्णता
के स्वागर में स्वाहा कर दो, तब समान संपूर्ण समीप बनेंगे। सारा ही जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं एक ही बात की ओर ध्यान केंद्रित करता है कि हमारे अंदर क्या है, कौन सी कमियां अब तक शेष है। क्योंकि जो कमियां हमारे अंदर है हम उसे कमी नहीं मानते, हमने उसे आभूषण की तरह श्रृंगार करके रखा है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि वो जो कर रहा है वो सही है, दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि वो जो कर रहा है वो सही है, दोनों ये सोचते हैं कि जो दूसरा कर रहा है वो गलत है। बस यही एक चीज है। यहां पर इस पुरुषार्थी जीवन में कौन क्या कर रहा है, क्योंकि यहां हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहा है, संगठन की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, कौन क्या कर रहा है उससे हमारी बुद्धि हट जाए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पुरुषार्थ यह है, सारा ध्यान स्वकेंद्रित हो जाए, स्व पर हो जाए कि मुझे क्या करना है। यहां हर व्यक्ति वही कर रहा है जो वो करने आया था, जिसका महान लक्ष्य नहीं था उसमें लक्षण भी महान नहीं आ सकते। इसके लिए मुझे वही करना है जो मैं करने आया था, या फिर वो भूल गया परंतु अभी वर्तमान समय जो भी ज्ञान लिया, जो भी अध्ययन किया, उससे जो समझ प्राप्त हुई है उसके प्रकाश में इतना तो हम जरूर समझते हैं कि मुझे कुछ और करना है जो मैं कर रहा हूं, कुछ तो ऐसा करना है जो अब तक नहीं किया था, कुछ तो ऐसे प्रयोग करना है जो प्रयोग अब तक नहीं किए थे, ऐसा कुछ तो स्वयं में नवीनता लानी है। और एक दूसरी एक चीज है, एक है संगठन में बैठ के प्रयोग करना, उसका अपना बहुत ज्यादा महत्व है, परंतु यहां पर सेल्फ स्टडी, सेल्फ ड्रिल, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई कोई चीजें क्या है, हमने एक मुरली आज ले ली, सपोज अभी हम डिस्कस करने वाले कल की मुरली हमने डिस्कस कर ली, यहां डिस्कस कर ली, बहुत सारे पॉइंट्स भी निकले, हमने कुछ याद रखे कुछ भूल गए, ये एक बात है। परंतु एक दूसरी एक चीज होती है खुद सब कुछ करना, खुद स्टडी करना। खुद स्टडी किया हुआ जो रहता है वो ज्यादा समय याद रहता है, खुद स्टडी किया हुआ जो है ज्यादा समय उसका प्रभाव भी पड़ता है। संगठन का तो पड़ता ही है, परंतु संगठन का जो है वो एक आगे की स्टेप है, उससे पहले कई लोग, हम हमेशा संगठन की महिमा करते हैं सब जगह, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा अपवक्ता व्यक्तिगत पुरुषार्थ है वो एक अलग ही है, सब मिलके कर रहे हैं बहुत अच्छा है, परंतु साथ साथ हमारा व्यक्तिगत एक कुछ और पुरुषार्थ होना चाहिए, जो कि खास हमारी एक कमजोरी है कोई तो वो नहीं जा रही है, वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि उसको पकड़ में ही नहीं आ रही है वो, परंतु है जरूर। सारा पुरुषार्थ जो है ना वो संगठन में वो कहीं खो जाता है, संगठन का बहुत महत्वपूर्ण है, संगठन का तो एक जैसे किला है, इस किले में, संगठन के किले में विकर्म नहीं होते, बाहर चले जाओ इससे तो विकर्म चालू हो जाते हैं, परंतु इस संगठन में भी जो एक पुरुषार्थ है आपका सबका मिलके, परंतु साथ साथ एक और पुरुषार्थ करना है जिसमें होगा आपका अकेले बैठकर चिंतन करना, अकेले बैठकर, जैसे आज की मुरली लिया हमने, अभी आज की मुरली में बहुत सारी पॉइंट्स हैं, उसमें से हमने एकदम नहीं पकड़ में आएगी, कुछ तो एक दो तीन निकाल ले उससे, अब मुरली बाजू में, अब वो दो तीन पॉइंट है, अब उस पॉइंट्स को बहुत ही गहराई से अध्ययन करना, स्टडी करना उनकी, और करते करते ही मगन अवस्था को प्राप्त कर लेना। वास्तविक योग तो हमारा आर्य बाबा ने कहा ना, चलते फिरते तुम क्या हो, चैतन्य लाइट हाउस हो, चलते फिरते तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रहना चाहिए, ऐसे जो बच्चे हैं वो लाडले हैं, बाबा को ऐसे बच्चे प्रिय है। केवल योग के कमरे में गए और योग किया उसका तो बहुत महत्व है, परंतु बाबा के कमरे के बाहर ही हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो, तो जिस समय आप अंदर जाएंगे उस समय तो और ऊंची हो जाएगी। वहां पर, नहीं तो आप देखो कि बाबा के कमरे में जाने के बाद कितना टाइम लगता है उस तक पहुंचने में। वो यहां है, हम यहां है, या ऊपर है हम नीचे है, वहां तक पहुंचने को बहुत टाइम लगता है आत्माओं को। अगर पहले से ही कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लिंक टूटे ना, तो ये बहुत फास्ट हो जाए योग का समय जो है। इसके लिए एक प्रिंसिपल है कि यहां करते, यहां निरंतर स्वयं को याद दिलाते रहना कि मैं क्यों आया था, या अभी मुझे क्या करना है, एक और मुझे ही करना है सब कुछ, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, आपके लिए आपको ही सब कुछ करना है, दूसरा आपको जानता भी नहीं है एक्चुअली। पति पत्नी साथ रहते सारी उम्र, फिर भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते एक दूसरे के बारे में, नहीं बता सकते कि ये क्या है, मतलब इतना सूक्ष्म है ये। हर आत्मा की अपनी अपनी दुनिया है, हर सितारे की अपनी अपनी दुनिया है, हर आत्मा एक, यहाँ एक दुनिया नहीं है, कितनी सारी दुनियाएं हैं। हर आत्मा का अपना एक संस्कार है, अपना एक संसार है, उसमें ही वो जीता है, रहता है, उसके अपने दुख दर्द, उसकी अपनी सुख फीलिंग्स, भावनाएं, इमोशंस, सबके साथ वो जीता है। इसके लिए जो दूसरा पुरुषार्थ कर रहा है, वो पुरुषार्थ मेरा नहीं हो सकता है, मेरा पुरुषार्थ कुछ और होगा। संगठन में कुछ गाइडलाइंस है, वो सब फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा बात कर रहा हूं मैं, कुछ ऐसा पुरुषार्थ होगा संगठन का जो है वो जनरल हो गया, पर मेरा व्यक्तिगत कुछ और होगा, कुछ तो एक अलग होगा, और वो एक ऐसा होगा कि शायद मेरे अलावा दूसरा वो कर भी नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि मेरी ये कमी जो है उसमें वो कमी है ही नहीं, वो केवल मुझ में वो कमी है, तो उसको वो पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई ज्ञान में आने से पहले से ही किसी का शांत स्वभाव है, क्रोध कभी किया ही नहीं है पहले से ही, उसका पुरुषार्थ ज्ञान में आने के बाद कुछ और होगा। परंतु एक व्यक्ति है जो अति क्रोधी है, वो जब ज्ञान में आता है उसका तो 10-15 साल तो उस क्रोध से मुक्त होने में ही लगते हैं, उसकी अवस्था कुछ और है। स्पिरिचुअल कैलिबर जो है हमारा, हर एक का अपना अपना है, और हर आत्मा विभिन्न अनुभवों के साथ ज्ञान में आई है। पीछे क्या हुआ पता नहीं हमको, किस किस तरह की हमने साधनाएं की हमें पता नहीं है, चालू कहां से किया है ज्ञान में, सबसे मुख्य बात वो है, ज्ञान किस तरह लिया गया और व्यक्ति ने चालू कैसे किया है, किस पॉइंट से चालू किया है आपने। हो सकता है कोई आत्मा अभी अभी आई है, परंतु पहला उसका बहुत जबरदस्त कुछ है, साधना है, अभी तो बस उसको एक ट्रिगर चाहिए था, मिल गया और उड़ गई। और कोई है आत्मा की जो आ तो गई बचपन से, परंतु टाइम बहुत है, उन्नति नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल वही है जहां 10 साल 15 साल पहले थी, क्योंकि तीव्रता चाहिए। इसके लिए बाबा ने एक शब्द जो कहा है, तड़प चाहिए, तड़पन, पुरुषार्थ में तड़पन चाहिए। दो उदाहरण, जैसे तुम पहले ज्ञान में आए थे तब जैसे तड़पन थी वैसी तड़पन, दूसरी तड़पन किसमें होती है, वो भी है, और ज्ञान में बांधे लिया। ये दो का उदाहरण हमेशा बाबा देते, पुरुषार्थ में तीव्रता चाहिए, तड़प चाहिए, मतलब उसका खींच चाहिए हमको। अभी इतनी खींच आत्माओं में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये प्यास तो है पुरुषार्थ करने की, पर साथ साथ बहुत सी प्यासे हैं। ये तो है बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत आगे जाना है, बहुत अचल अडोल स्थिति बन जानी चाहिए, ज्ञान की भी बहुत अच्छी स्थिति, योग की भी बहुत अच्छी स्थिति, सेवा में भी निर्विघ्न ये हो जाए, परंतु ये जो प्यास है, इस प्यास के साथ साथ साइमल्टेनियसली कुछ और भी प्यासे हैं जो साथ साथ चल रही है। ये जो दूसरी प्यासे है, इस प्यास को पूरा होने नहीं देते, उसमें तीव्रता नहीं आने देते। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि क्या वास्तव में मुझे पुरुषार्थ करना है या ऐसे ही दिखावा है, ढोंग, दिखावा, आडंबर, शो, ऐसा तो नहीं है। ये अपने आप से पूछने का प्रश्न है, कि मैं जो भी कर रहा हूं ये वास्तविकता है या इसमें कुछ झूठ है, इसमें कुछ मिलावट है? सबसे पहला प्रश्न ये स्वयं से पूछना है, सेल्फ डिसेप्शन, आत्म प्रवंचना जिसको कहते हैं हिंदी में। खुद को तो नहीं ठग रहा हूं, कर तो रहे बहुत अच्छा अच्छा प्लानिंग, हम ये भी किया वो भी किया कर भी रहे, परंतु फिर भी हम देख रहे हैं कि क्यों उन्नति नहीं हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये स्वयं स्वयं को पूछने का प्रश्न है। पहला तो जो कहा कि किसी को देखना नहीं, दूसरा यहां क्यों आए ये प्रश्न बार बार स्वयं से पूछते रहना, तीसरा खुद स्वयं का अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ, और ये स्वयं से बार बार बात करते रहना, खुद ही से बात करते रहना। जो तीन बातें बाबा ने कही है, स्वयं से बातें, बाप से बातें, और तीसरा ज्ञान का चिंतन, ये तीन बातें हमारी रोज होनी चाहिए। स्वयं से खुद बात करते रहे, बाबा से बात करते रहे, और ज्ञान का चिंतन करते रहे, सिमरन करते रहे, ये तीन बातें रोज 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 होनी ही चाहिए। तो हमारा जो पुरुषार्थ है उसमें हर दिन हम कुछ ना कुछ नवीनता लाए। कल जो पुरुषार्थ किया उसमें आज थोड़ी और तीव्रता हो, या कुछ तो एक नवीन पॉइंट हो। अभी नवीनता के लिए बहुत अच्छा योग की आवश्यकता है, बहुत अच्छी प्यूरिटी की आवश्यकता है, उसके सिवा नए विचार आते नहीं है, वही 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 आते रहते हैं। संकल्प जो है ना चलना बंद नहीं रहता है, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है उसमें। तो कैसे नए विचार, नया पुरुषार्थ, नए संकल्प, नई सोच, सब कुछ नवीनता हमारे जीवन में आ जाए, सोच में, उसके लिए सबसे मुख्य है, एक तो योग तो है ही, परंतु अपना अध्ययन का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मूल्य तो है, उसके अतिरिक्त भी और भी कुछ करना पड़ेगा। रोज की साकार मूल्य तो एक है ही, अव्यक्तवाणी भी पढ़ते हैं आप रोज
जी,
रोज अव्यक्तवाणियां तो है, उसके बाद में लिटरेचर है, उसके बाद में ज्ञानामृत में कुछ महत्वपूर्ण लेख है, उसमें कुछ अनुभव है, और सबसे महत्वपूर्ण जो यज्ञ का इतिहास है, दादियों के अनुभव, वो हमसे छूटे ना, बार बार उनका रिवीजन थोड़ा करते रहना, सुनते रहना, पढ़ते रहना। ये जो चीजें हैं ना ये बहुत महत्वपूर्ण, ये रॉ मटेरियल है मुरली के अलावा। आत्माओं के अनुभव हम बहुत कम पढ़ते हैं, पुरानी पुरानी ज्ञानामृत निकालो, ढूंढो, उसको अलग अलग जगह रख दो, आपका बेड जो है वहां एक रहेगी, आपका डिपार्टमेंट है वहां एक जगह अलग रहेगी, मतलब जब भी जहां खड़े हो उठाओ और उसको पढ़ना। अपने आप को ज्ञानमय स्थिति चाहिए, बहुत ज्ञानमय स्थिति, ज्ञान विज्ञानमय स्थिति, तो नई आइडियाज यहां से आएगी। नहीं तो हम क्या करते हैं, अव्यक्तवाणी एक पढ़ लिया या साकार पढ़ लिया और योग किया, इतना रूटीन है श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं का, पर इससे अलावा भी हमको कुछ और भी करना है। उसके लिए आपको फिर लिटरेचर की जो बुक्स है, अलग प्रकार की किताबें, जैसे जिसमें समाज के बारे में लिखा हुआ है, अध्यात्म और समाज, वहां से आपको आपके पुरुषार्थ की कोई एक प्रेरणादायक पॉइंट मिल जाएगी, जो अब तक मतलब पता थी, सुन रहे थे, परंतु उसको हमने पुरुषार्थ के रूप में नहीं लिया था। ऐसा कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज मिलेगी। न्यू आइडियाज मिलने का एकमात्र साधन जो कहते हैं ना किताबें, इसके लिए अपने आप को इनमें डुबो के रखना है। अलग अलग अलग, उसमें बहुत वैरायटी चाहिए। एक ही आप सोचोगे मैं केवल ये पढ़ूंगा तो मन उसको रिजेक्ट करता है थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद। नहीं नहीं, कहीं ज्ञानामृत ले लिया, कहीं वो ओम शांति मीडिया ले लिया, तो कहीं फिर वो कोई किताब ले लिया, या किसी का लिखा हुआ लेख ले लिया,
वरदान के ऊपर चित्र बनाना।
हाँ, वरदान के ऊपर, हाँ, वो सारा विजुअलाइजेशन से आप कर सकते हो। जो भी आप पढ़ते हो ना, पढ़ते पढ़ते ही विजुअलाइज करना है। पढ़ लिया पूरा मुरली तो विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। अभी अभी करने जाओ तो दूसरा चेंज होता है। इसके लिए फोकस सारा रहे एक वरदान पर, उस वरदान को एक एक उसका जो लाइन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, वाक्य की रचना कैसे है, उसके ऊपर ध्यान देकर उसको विजुअलाइज करना, देखना, और अपने मन को उसको स्वीकार कराना, तो वो हमारे सोच का हिस्सा बन जाए। इसके लिए पढ़ने का हमारा जो क्षेत्र है उसको बढ़ाना है थोड़ा सा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है पुरुषार्थ में। जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो केवल मुरलिया तो है ही, वो मेन है, पर उनको समझने के लिए और बातें चाहिए, क्योंकि वो जो मुरलिया है वो बहुत फिलोसॉफिकल लेवल की है। इतने अगर एक पैराग्राफ अगर आप पढ़ते हो उसको समझने के लिए 2-3 क्लासेस चाहिए। डायरेक्ट कोई पढ़े नहीं समझ में आता है, क्योंकि इतनी गंभीर और इतनी गहराई वाली बातें होती है उसमें, वो पकड़ में नहीं आती है, बहुत सारी पॉइंट छूट जाती है इधर उधर, कितना भी हम कोशिश करें। इसके लिए कभी कभी हमारी जो ग्रास्पिंग पावर है, धारणा शक्ति को अगर बढ़ाना है, और एक शक्ति है एकाग्रता की शक्ति, यह बहुत जरूरी है। यहां कोई कम बुद्धिमान और ज्यादा बुद्धिमान ऐसा कोई नहीं है, यहां अंतर किसमें, एकाग्रता में, कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज्यादा हमारा कॉन्सेंट्रेशन उतना ही हम उसको पढ़ते समय और तुरंत ग्रहण करना, विजुअलाइज करना, इंप्रेशन, नए संस्कार क्रिएट करने हैं। अब तक के जो संस्कार है कुछ और संस्कार है, ज्ञान की चर्चा करना ये भी नए संस्कार क्रिएट करने हैं। ज्ञान के नए संस्कार हम क्रिएट कर रहे हैं ना, जैसे अभी हम यहां बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इससे फायदा क्या? हम ये भी सोचते हैं क्या है, वही तो बातें हैं, हमने ये बहुत बार सुनी है, सुनी भले है, परंतु अभी क्या हो रहा है, एक नई चीज हो रही है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं इसको मेडिकल साइंस में, जो हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, पहले कहते थे कि वो एक बार मर गए तो मर गए, एक ही बार रहते हैं, पर वो अपना चेंज नहीं करते अपनी साइज स्ट्रक्चर, पर अभी है वो अपना साइज सब चेंज करते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसके लिए नए संस्कार, उसको हमारी भाषा में हम कहते हैं नए संस्कार क्रिएट करना। हम यहां जो संस्कार बैठ के क्रिएट कर रहे हैं, ये ज्ञान के संस्कार क्रिएट कर रहे हैं, और ये इतने सूक्ष्म में होते रहेंगे, और ये बलवान बनेंगे धीरे 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 धीरे, और इनकी पकड़ फिर धीरे धीरे बैठेगी। तो वो जो अज्ञान, विस्मृति, भोग के जो संस्कार है वो शिथिल होंगे धीरे धीरे। इसके लिए इस तरह की जो चर्चा है ये बहुत आवश्यक है, और ये एक दिन की चर्चा नहीं है, हर दिन की चर्चा है। अगर कोई ना भी हो तो भी अपने आप से बातें करो, या बाबा के कमरे में जाके बाबा की मुरली बाबा को सुनाओ कि आपने आज ये कहा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास ही नहीं, कोई प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम, कोई बिजी, तो फिर क्या, अभी क्लास नहीं मतलब क्या, मुरली बंद, उसके ऊपर चर्चा नहीं, ऐसा नहीं हमारा। इसके लिए कहा ना, जो संगठन को बिल्कुल आधार नहीं बना देना, हम इंडिपेंडेंट ही रहे। ये मार्ग जो पुरुषार्थ का है, अकेले चलना है। संगठन मिल गया बहुत अच्छी बात है, पर हो सकता है आज है कल नहीं है, आज है संगठन में जो है वो आज है, चले गए सबके सब, अब तो क्या हम पुरुषार्थ रोक देंगे? इसके लिए संगठन का भी आधार नहीं लेना है, है तो उपयोग करो, परंतु नहीं है तो हम एक अकेले ही चलेंगे, क्योंकि मार्ग अकेले चलने का है वास्तव में। तो ये 2-3 बातें हैं, अभी हम कल की मुरली पढ़िए। क्या कहा उसमें,
3 सूत्र सत्य।
पहले हम यहां से यहां चालू करते हैं कि जैसे कि ये एक दरबार है, राज्य, बाबा इस राज्य को देख रहे हैं कि राज्य ठीक चल रहा है या नहीं। पूरी मुरली अगर समराइज करनी है तो ये एक हॉल है, सपोज यहां पे एक राज्य है, प्रश्न है बाबा का ये राज्य कैसा चल रहा है। ये राज्य में यहां एक राजा है, जिसके लिए बाबा ने भिन्न भिन्न अलग अलग शब्द यूज किए, कभी राजा कहा, कभी स्वराज्य अधिकारी कहा, कभी डबल स्वराज्य अधिकारी कहा, उसी को कभी रचयिता कहा, कभी करावन हार कहा, ऐसे अलग अलग शब्द उसके लिए प्रयोग किए। राजा यहां 3 शक्तियां, त्रिमूर्ति शक्तियां, विशेष कार्यकर्ता ब्रह्मा विष्णु शंकर, संकल्प बुद्धि और संस्कार, सहयोगी कार्यकर्ता, विशेष सहयोगी कार्यकर्ता, सहयोगी कार्यकर्ता, विशेष शक्तियां, त्रिमूर्ति शक्तियां, 3 शक्तियां। अलग अलग जगह मुरली में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण दिया बाबा ने ब्रह्मा शिव का, अपना ही उदाहरण दिया, जैसे क्या कहते हैं उसको, त्रिमूर्ति शिव, वैसे ही आत्मा की ये तीन शक्तियां हैं। इसमें ब्रह्मा कौन है?
आदि शक्ति
ब्रह्मा है। सारा खेल वही है, क्योंकि माया सबसे पहले ट्रेटर बागी मन को बनाती है। पहला मन, बुद्धि। बुद्धि बाबा ने कितना अच्छा शब्द कहा, निर्णय करना ये जैसे क्या है, पालना समान है, पालना समान, निर्णय करना। और तीसरी शक्ति है संस्कार। और ये तीनों शक्तियां यहां और उनके नीचे है कर्मेंद्रिया। तो राजा, शक्तियां, कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया जो है इनके अधीन है तीनों के, ये तीनों इसके अधीन है। देखने में तो खाली कर्मेंद्रिया है और आत्मा है, बाकी कुछ दिखता नहीं है, ये जो भी है बीच का। बाबा ने प्रश्न पूछा है, राज्य कैसा चल रहा है? राज्य ठीक चल रहा है। रूलिंग पावर कैसी है, कहां तक है? और रूलिंग पावर अर्थात रूल करना, शासन करना, आत्मा इन तीनों के ऊपर राज्य करे, शासन करे, उसके अधीन हो, वश में हो। अगर रूलिंग पावर है तो माया वार नहीं कर सकती, माया आ नहीं सकती। मुरली में वाक्य है, अगर रूलिंग पावर होगी तो माया आ नहीं सकती। ये रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, इस तरह की बातें, दरबार, ये बातें आती है ना तो पकड़ थोड़ी कमी हो जाती है उस मुरली पर। बाकी तो हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, पर ये जब मन को वश में करने की बात आती है तो यहां सभी ढीले पड़ते हैं, क्योंकि मन को द्वापर से अब तक सबने वश में करने का प्रयत्न कर ही रहे, पर वो होता ही नहीं है। वो उसकी गति ऐसी तीव्र है या इतना चंचल है वो
बंदर का।
हाँ, वो अधिकारी की शक्ति को ही रूलिंग पावर कह दो। बाबा ने कहा अधिकारी की शक्ति, उसी को ही रूलिंग पावर कह दो। तो ये जो मन है, बाबा कह रहे हैं कि माया सबसे पहले यहां अटैक करती है। तीन शक्तियों के तीन कार्य बताए, मन अर्थात उत्पन्न करने वाला, संकल्प रचने वाला, बुद्धि अर्थात निर्णय करने वाली अर्थात पालना समान, तीसरा है संस्कार अर्थात अच्छे व बुरे, बुरा क्या
संस्कार,
अच्छा व बुरा परिवर्तन,
परिवर्तन
अच्छा व बुरा परिवर्तन करने वाला, तो ये संस्कार। तो तीन शक्तियां, तीनों के अपने कार्य। यहां पे बाबा ने और एक बात कही है, जैसे राजा जो होता है खुद कार्य नहीं करता है, कराता है, जो कारोबारी है उनसे कराता है, राज्य कारोबारी उनके उनसे कराता है, इसके लिए आत्मा भी इन तीनों से कार्य कराए। ये तीन शक्तियां राजा के अधीन रहे, राजा उनके अधीन ना हो जाए, नहीं तो राज्य यथार्थ रीति नहीं चलेगा। राज्य अगर यथार्थ चलना है तो ये तीनों इसके अधीन चाहिए। तो ये तो बाबा ने एक समराइज किया, फिर यहां एक सतयुग की बात जोड़ी। वहां एक धर्म और एक राज्य था, एक धर्म अर्थात एक के इशारे से बाकी सब चलने वाले, एक राज्य और एक धर्म अर्थात एक धारणा, श्रेष्ठ धारणा, चढ़ती कला वाली धारणा। यहां बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि मन क्या ना करे, बुद्धि क्या ना करे और संस्कार क्या ना करे। मन क्या ना करे, मन मनमत, मन में मनमत, बुद्धि में
मिलावट
और हलचल, निर्णय करने की मिलावट और हलचल। मिलावट भी कौन सी, यथार्थ और व्यर्थ, ये बुद्धि का। और संस्कार, संस्कार नाच ना नचाए, जैसे बंदर क्या करता है, नाच नचाता है, छलांग लगाता है यहां से वहां। यहां बाबा ने बहुत अच्छा शब्दों का प्रयोग किया है, चढ़ती कला और उतरती कला, किसकी, संस्कारों की। देखो संस्कारों की चढ़ती और उतरती कला की बात चल रही है, और एक ही आत्मा में ये अपडाउन एक ही दिन में एक ही घंटे में होता रहता है, कि संस्कार अभी अभी अच्छा वाला इमर्ज होता है, अभी अभी गिराने वाला इमर्ज होता है। तो संस्कारों की क्या, चढ़ती कला और गिरती कला, बुद्धि क्या? निर्णय शक्ति में हलचल और मिलावट। मिलावट कौन सी? व्यर्थ और यथार्थ।
यहाँ पे सर यथार्थ का मतलब?
हाँ, यथार्थ का मतलब बुद्धि जो निर्णय कर रही है वो कौन सा निर्णय कर रही है, यथार्थ निर्णय हो रहा है या अयथार्थ हो रहा है, इसकी परख क्या है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे अभी दो तीन, अच्छा वो 69 की मुरली में है कि जिसमें बाबा ने निर्णय परखने की शक्ति के लिए कहा हुआ है कि परखना क्या है, यथार्थ है या अयथार्थ है, अल्पकाल का है या सदाकाल का है, नुकसान है या फायदा है। जैसे कोई भी चीज हम भोग रहे हैं, भोग की कोई वस्तु है, ठीक है, हमको लगता है ये जरूरी है, इसका होना, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो कोई भी, या वो कोई संबंध हो किसी के साथ, हमको लगता है ये जरूरी है। अभी यहां हम किस क्या कसौटी पर इसको कसेंगे? तीन चीजें बाबा ने जो कही है, सबसे पहले इसमें फायदा है या नुकसान है, कोई भी चीज, कोई भी आदत हमारी जो है हमारे पास, इसमें हम उसको कैसे देखेंगे कि ये जो हम कर रहे हैं ये फायदा है या नुकसान है। साक्षी होके अपनी ही आदतों को, साक्षी होके अपने ही संबंधों को, साक्षी होके ही अपने ही लगाव को देखना, चाहे किसी से भी लगाओ या कोई भी आदत खाने की या पीने की या घूमने की, पहला प्रश्न है ये फायदा या नुकसान, इसमें हम पॉइंट्स निकालें। यहां फिर मोबाइल का भी आ सकता है प्रयोग, मोबाइल में व्हाट्सएप से लेकर सारे प्रयोग, फायदा है या नुकसान है एक, दूसरा अल्पकाल की प्राप्ति है या सदाकाल की प्राप्ति है। अल्पकाल में सुख मिलता है पर सदाकाल में आगे चल के दुख में परिणित होता है, तो ये अल्पकाल का है सदाकाल का है, यथार्थ है या व्यर्थ है। अब ये जो यथार्थ है, यथार्थ हर चीज यथार्थ तब होती है, दो चीजें होनी चाहिए, एक तो आत्माभिमानी में किए जाने वाले सारे कर्म यथार्थ है और याद में किए जाने वाले सारे कर्म यथार्थ, ये दो परिभाषा है उसकी। यथार्थ किसको कहेंगे? आपको लगता है वो यथार्थ है, मुझे लगता है ये यथार्थ है, याद में किए जाने वाले जो भी कर्म है वो सारे यथार्थ है, आत्माभिमानी स्थिति में जो भी कर्म किए जाएंगे वो सारे यथार्थ है, श्रीमत पर जो सारे कर्म किए जाएंगे थर्ड परिभाषा, वो सारे यथार्थ है। ये तीन यथार्थ की परिभाषा है बाबा के ज्ञान के हिसाब से। संसार में जाओ तो बहुत संघर्ष है उसमें, कोई कहेगा ये यथार्थ है, कोई कहेगा जैसे हमारे इधर इधर चलना गुनाह है, विदेश में उधर से चलना गुनाह है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। हमारे चल ये अगर कपड़े पहने तो ये एक्सेप्टेबल है, विदेश में वही कपड़े पहनो तो कहेंगे ये कौन से कपड़े, उनके देश में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, माय वे यूअर वे द वे नहीं है उसमें। तो बाबा जो कह रहे हैं वो ये जो तीन परिभाषा है यथार्थ की ये है। तो हम बात कर रहे थे मन बुद्धि और संस्कार, तो मन क्या ना करे, मनमत, ये तीन चीजों को सेपरेट करते आना चाहिए। कौन कौन सी? श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, परमत क्या है, सारे दिन भर एक ही काम है। ये श्रीमत, ये जो आया ये मनमत थी, ये जो आया ये परमत थी, इनको अलग अलग करो, सेग्रीगेट, ये एक सबसे अच्छा अभ्यास है। सारे दिन भर जो संकल्प चलते हैं, जो भावनाएं उमड़ती है, जो फीलिंग्स आती है हमको, एक ही चीज है उसमें, ये मनमत है, ये परमत है, ये श्रीमत है, ये तीन चीजों में से छाटना। तो मन मिलावट क्या करे, मनमत में ना आए। दूसरा बुद्धि के लिए क्या कहा, मिलावट और हलचल। बुद्धि हलचल में कब आती है दीपक भाई? बुद्धि कब हलचल में आती है? हाँ, और हलचल में कब आता है? कोई भी समझ में नहीं आता है क्या करना है, धुंधला सा हो जाता है सारा,
जब संकल्प ज्यादा चलता है,
संकल्प ज्यादा चलते हैं, श्रीमद से थोड़ा दूर हो जाते हैं, मतलब यहां रह रहे हैं सब कुछ है परंतु एक अनुभव कि बाबा हमसे दूर चला गया, बाबा के कमरे में बाबा के सामने अमृत वेला कर रहे, मुरली सुन रहे, सेवा कर रहे सारे दिन भर, फिर भी ये अनुभव कि वो दूर चला गया, ये कब होता है? विस्मृति या भूल और निश्चय तो बहुत है, निश्चय का तो बात मत करो, बहुत ज्यादा निश्चय है। और
उस समय विस्मृति रहती कि हम वास्तविकता पहले
निश्चय की पर कैटेगरी से निश्चय जो है ना बहुत बड़ी बात है निश्चय। पर बाबा ने एक मुरली में कहा निश्चय या संशय बस ऐसा ही होता है, एक अव्यक्त वाणी है 69 की। पुरुषार्थ में नंबरवार होते, निश्चय में नंबरवार नहीं होते, पर निश्चय में भी है। इसके लिए कहा ना निश्चय बुद्धि केवल 8 ही है। अच्छा चलो वो तो दूसरी बात है, निश्चय थोड़ा अलग टॉपिक है। परंतु ये अवस्था मैं कह रहा हूं कि जिसमें जैसे धुंधला सा आ गया है, अब समझ नहीं आ रहा है कि करना है कि नहीं करना है, जाना है कि नहीं जाना है, करना क्या है जीवन में आगे, यहां तक तो आ गए, अब आगे क्या करना है। और कितना भी योग करो उसमें दिखता नहीं है कुछ। ये अवस्था कब आती है? ये उन आत्माओं की बात कर रहा हूं मैं जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, उनके जीवन की बात, बाकी का तो छोड़ दो, जिनको पुरुषार्थ से कोई लेना देना है उनकी हम चर्चा कर ही नहीं रहे। हम उनकी बात कर रहे हैं जो संपूर्ण रेगुलर है अमृत वेला में, एक दिन भी जिनका अमृत वेला मिस नहीं, जो संपूर्ण रेगुलर है मुरली पढ़ने में, स्मरण रखने में, चर्चा करने में, और सारे दिन भर भी बहुत ध्यान रखते हैं। उनके जीवन में भी देखा गया है कि ऐसी कभी कभी अवस्था आती है कि जिसमें धुंधला सा आ जाता है और बाबा से आंतरिक वो अनुभव करते हैं कि दूर हो गए। ये अवस्था तब आती है जब सूक्ष्म में कोई ना कोई श्रीमत अवज्ञा, उनसे अवज्ञा हो रही है या उल्लंघन कर रहे हैं, और ये इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उनको ही पकड़ में नहीं आती है ये बात, इतनी वो सूक्ष्म बात है। इसके लिए बुद्धि बहुत रिफाइंड चाहिए और लंबे समय का अभ्यास चाहिए, तभी ये कार्य होता है। तो मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा संस्कार क्या करते हैं, नाच नचाते हैं। जैसे बंदर नाच नचाते हैं, संस्कार नाच नचाते हैं। अच्छे संस्कार जब इमर्ज होते हैं तो सब अच्छा लगता है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। कुछ संस्कार ऐसे इमर्ज होते हैं कि जिसमें इसके प्रति रुचि कम हो जाती है, लोगों को मुरली पढ़ना एक बार पढ़ लिया या थोड़ा सुन लिया बस हो गया, अभी आगे उसमें और कुछ नहीं करना है, उसमें क्या है, और वही वही तो बातें ये कर रहे बैठ रहे देखते क्या करते हैं, मतलब इस तरह का भाव उत्पन्न हो जाता है। जबकि बाबा ने कहा एक एक महावाक्य कैसा है, अमूल्य है, लाखों करोड़ों का उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती है, वहां पर वो कम हो जाता है। तो वो एक बात है। तो संस्कार नाच नचाते हैं, चढ़ती कला और गिरती कला किसकी, उतरती कला किसकी, संस्कारों की। प्रश्न ये है अपने आप से पूछने का, मेरे अंदर ऐसे कौन से संस्कार है जो गिरती कला वाले, इसकी एक लिस्ट बनाओ कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा संस्कार है जो मुझे गिराता है। ऐसा कोई संस्कार है कि जो अगर फ्यूचर में इमर्ज हो गया तो मेरा अब तक का ज्ञान योग बह जाएगा, इतना वो शक्तिशाली है। ऐसा कोई संस्कार है क्या अभी भी, इसकी चेकिंग करनी है। तो विदेशियों से बाबा यहां बात कर रहे हैं, विदेशियों से बाबा ने प्रश्न पूछा कि विदेशियों को माया आती है, बाबा ने उनको थोड़ा कांग्रेचुलेशन भी किया। क्या किया कि पहले वो तो ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए भी कहा है आगे कि दूसरे धर्म में कुछ टाइम थे और फिर इधर आ गए, फास्ट आ गए, इधर सहज आ गए, उधर से इधर, उस डाली से इस डाली में आ गए। इसके लिए जो कि थके हुए थे, डीप स्लीप, फिर जैसे कि गुम हो गए नींद में, तो उनके लिए पिछले संडे में भी ऐसा ही था ना, दो विशेषता सुना कि बहुत भोग लिया उसके लिए त्याग सहज हो गया, लोक मर्यादा पहले से टूटी हुई है, पहले से ये नहीं है उसका, तो यहां नष्ट हुआ फास्ट हो गया, वही वाला सीरीज यहां बाबा कह रहे। पर भी विदेशियों ने आंसर दिया कि माया के पुराने ग्राहक है, तो बाबा ने क्या कहा उनको, अभी नए ग्राहक दे दो माया को तो तुम छूट जाओगे। फिर यहां फिर से बात आ गई वही रूलिंग पावर की, जिसके पास रूलिंग पावर है वहां पर माया आ नहीं सकती। तो रूलिंग पावर कहां तक है ये प्रश्न है, राज्य कैसा चल रहा है ये प्रश्न है, अधिकार कितना है उनके ऊपर वो प्रश्न है, और माया किस पर अटैक करती है सबसे पहले, आदिदेव ब्रह्मा पर, वो कौन है, मन, और मन क्या करता है, संकल्प। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो संकल्पों के रूप में माया आती है, पहले संकल्प बुद्धि और फिर वो धीरे धीरे संस्कार बनता है। तो बाबा ने यहां कारण उत्तर क्या दिया इसके लिए कि जो कारण है उसको ढूंढो और उसका क्या करो, सेकंड पेज क्या करो उसका निवारण। कारण खत्म माया खत्म। जो बीमारी है उसका इटियोलॉजी, उसकी क्या कारण है, कौन सा बैक्टीरिया वायरस और क्या है, उसमें जाओ और उस बीमारी को खत्म करो। सबसे पहले तो डायग्नोसिस करके आना चाहिए, निदान। दवाइयां तो भरी पड़ी है बोतल में फार्मेसी में दवाइयां है, उसकी उसकी कोई कमी नहीं है, दवाइयां बहुत है।
डायग्नोसिस
इंपॉर्टेंट है। किसका डायग्नोसिस? विकारों का डायग्नोसिस। किसका डायग्नोसिस करना है? निदान किसका करना है? विकारों का निदान, कि ये जो मुझे हो रहा है ये काम विकार के कारण हो रहा है, ये है डायग्नोसिस। अब क्या करना है, अभी इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। इसका बीज देह है, अब देह को खत्म करो, देह के आकर्षण को, वो उसका फिर ट्रीटमेंट वहां से चालू होगा। तो डायग्नोसिस किसका करना है? विकारों का। ये हुआ काम की वजह से हुआ। अच्छा, ये संबंध में ये गड़बड़ क्यों हो रही है? डायग्नोसिस मोह, मोह है आत्मा के प्रति, तो मोह की वजह से हो रहा है। अच्छा, ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? लोभ आ गया है, उत्पन्न हो गया है। संन्यास के पथ पर चलते चलते अब ये भी चाहिए और वो भी चाहिए और ये भी चाहिए। क्यों चाहिए? हमको जरूरत है इसके लिए नहीं, क्योंकि उसके पास है। अभी जो गाड़ी है वो नई गाड़ी देखते ही वो बैलगाड़ी बन जाती है क्यों? अभी जो मोबाइल है उससे दूसरा मोबाइल किसी के पास देखा तो ये व्यर्थ मालूम पड़ता है। मनुष्य की ये स्वभाव है कि उसको जो नहीं है वो चाहिए, और जैसे वो मिल जाता है वो व्यर्थ हो जाता है, फिर कुछ और चाहिए। और ये जो इच्छा है वो अभिप्सा जो है, ये एक शब्द है हिंदी में दुष्पूर, कभी भी खत्म ना होने वाली है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसको, ये जो कहा ना बाबा ने, बंदर की तरह नाच ही नचाते रहते हैं उसको सारी उम्र भर। तो कारण को ढूंढना और उसका निवारण करना, लोभ मोह अहंकार, ज्यादा से ज्यादा जो झगड़ा का कारण जो कौन सा है, मैं अहंकार। इस यह अहंकार तो सबसे सूक्ष्म है, यह तो व्यक्ति भी नहीं जान सकता कि मेरे अंदर इतना सूक्ष्म है। इसके लिए तो लास्ट में रखा है उसको, अहंकार की हम बात तो बाद में करेंगे, पहले ये जो बाकी के है इसका तो डायग्नोसिस कर सके। काम का डायग्नोसिस होना चाहिए, क्रोध का डायग्नोसिस। क्रोध का डायग्नोसिस मतलब इसमें क्या है, हमने आवेश तो किया नहीं, या आवेश भी क्रोध में आता है, फिर वो बाद में पता चलता है कि ये क्रोध था, क्योंकि वो उसी का स्वरूप है। एक क्रोध है जो एकदम चेहरे पे दिखाई दे, दूसरा क्रोध है अलग प्रकार का, आंखों आंखों वाला, नैनों से। और कोई कोई है जो अंदर ही दबा के रख देना बस, कुछ कुछ आत्माएं होती ना ऊपर से कुछ भी नहीं दिखाती है। सेटल्ड हेट्रेट, सेटल्ड एंगर इज नोन एज हेट्रेट, घृणा में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि लोक मर्यादा की वजह से दिखाते नहीं है, या बहुत छोटे पद पर है इसके लिए नहीं दिखा पाते, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो दब जाता है और घृणा में परिवर्तन होता है। जैसे कोई आत्मा के प्रति बहुत क्रोध आया पर हमने नहीं दिखाया, पर रखा उसकी पालना की, वो घृणा में धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है। और समय की इंतजार है बस, समय आएगा तो कुछ भी कर सकता है उस आत्मा के लिए, वो आत्मा को। तो बाबा ने यहां अंत में क्या कहा, कारण को निवारण करो। उसके बाद का पैराग्राफ क्या है, मुरली, मुरलीधर वाला है ना, तो क्या करना है, मुरली कौन सी, कैसे
तो माया भाग
गया, माया न्योछावर भाग नहीं, न्योछावर हो जाएगी, सरेंडर हो जाएगी माया, ऐसा। वो सांस की मुरली, वो स्थूल मुरली तो बजाते हो और उसमें बहुत एक्सपर्ट हो, परंतु वो बजाते समय ये ध्यान में रहे कि ये जो मुरली है ये बजाई है तो माया को सरेंडर कराने वाली मुरली चलाओ। शब्द क्या है बाबा के, माया को सरेंडर कराने वाली मुरली, मतलब देखो पढ़ाई का कितना महत्व है यहाँ। कल की मुरली में एक पॉइंट था, पढ़ाई में योग भी है, सारा मदार है पढ़ाई पर, फुल स्टॉप, पढ़ाई में योग भी है। क्यों योग भी है, पढ़ाई में इतनी कम रुचि है, पर सब आत्माओं को, सब आत्माओं को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, योग और सेवा। सेवा के लिए बुलाओ तो फटाफट भाग के आएंगे, योग में भी बहुत रुचि है, पर पढ़ाई जहां बात आती है वहां पे पकड़ ढीली हो जाती है। पढ़ाई तो पता ही है ना, ऐसा हो जाता है।
हर जगह आत्मा आत्मा घूम रही है, हर जगह आत्मा ही घूम रही है, बोली पढ़ो ये पढ़ो,
हर जगह वही है आत्मा परमात्मा। आत्मा समझ के बाप को याद करो, लक्ष्मी नारायण बनना है, दिव्य गुण धारण करना है, स्वदर्शन चक्र घुमाना है, संपूर्ण बनना है, समान बनना है, फॉलो फादर करना है, बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है, अशरीर स्थिति का अभ्यास करना है, रूहानी ड्रिल करनी है। अब बताओ क्या रह गया, ये तो पता ही है, यही डिस्कस करोगे ना जाके, करो, हमको पहले ही पता है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये जो है ज्ञान में रुचि होना, इसके लिए तो ये वाक्य चल रहे हैं, माया को सरेंडर कराने वाली मुरली बजाओ, ये मुरली चलानी है, इसका साज आना चाहिए, वो स्थूल साज वाली मुरली नहीं। इसके लिए ज्ञान में ही समाया हुआ है, मुरली से प्यार करना अर्थात ज्ञान से प्यार। अब ज्ञान से प्यार जब हो जाता है और ज्ञान बहुत अच्छे लगने लगता है, तो स्वतः ही जिसने ये ज्ञान दिया, जिसका ये ज्ञान है, वो स्वतः ही स्मृति में रहता है। बाबा ने कभी कहा है ये ज्ञान याद रखना अर्थात मुझे याद करना है, एक मुरली में ऐसा भी कहा है, ये ज्ञान जिसकी बुद्धि में है वो अर्थात मेरी याद में है। उसकी याद केवल वो नहीं, आत्मा समझ और परमात्मा, केवल ज्ञान भी जिसकी बुद्धि में है वो अर्थात उसकी याद में है।
84 का चक्र,
हाँ, कोई भी 84 का चक्र, सदर्शन चक्र, ये सारे जो रूहानी ड्रिल, 3 स्वरूप, 2 स्वरूप, 5 स्वरूप, जो इतनी सारी बातें बाबा ने कही है, तो इसके लिए अव्यक्त वाणियों का अध्ययन स्टडी बहुत जरूरी है। इस विश्वविद्यालय में सेवा अंतिम विषय है, इसको भूलना नहीं है। पहला ज्ञान है, सेवा लास्ट है। कितनी आत्माओं को हमने देखा है केवल सेवा के पीछे लग गई, सेवा 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 सेवा, ज्ञान छूट गया। योग तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं पर ज्ञान तो बिल्कुल ही छूट जाए। ज्ञान की परिभाषा ये नहीं है, क्लास में गए, मुरली सुने, नोट्स लिखे और महावाक्य प्रश्न उत्तर धारणा के लिए सार वरदान और स्लोगन लिख के आ जाना, इसे ज्ञान नहीं कहा जाता है। ज्ञान कुछ और है, ज्ञान अर्थात रिसर्च करनी होती है उसमें, ये ज्ञान की परिभाषा है। तो यहां ये बाबा ने पूरा किया, वो पद्मा पदम भाग्यशाली है, वहां पर भी थोड़ा फिर उसके बाद में विनाश के लिए विदेशियों का विशेष कर्तव्य, अभी तक तो पालना ली, जो पहले पालना लेने वाले थे उन्होंने रिटर्न में क्या दिया, यज्ञ की स्थापना की।
भारतवासी,
तो भारतवासियों को क्या करना है, अभी अंतिम आहुति कहो या प्रत्यक्षता कहो या संपूर्णता कहो, उन्होंने वो जिम्मेवारी ली, तुम ये जिम्मेवारी लो। उन्होंने वो आहुति दी, तुम अभी अंतिम आहुति डालो। ये कार्य विदेशियों को करना है, और विदेश अर्थात विनाशी, व्यंग किया है बाबा ने, विदेश अर्थात विनाशी, भारत अर्थात अविनाशी, तो उनको निमित्त बनना है विनाश का, ये तो निमित्त बने हैं स्थापना का। हमारा क्या होगा, चलो उसमें आएंगे हम, 5-10 मिनट है हमारे पास। तो ये यहाँ इसको बाबा ने पूरा किया, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से मुलाकात, लास्ट संडे में भी ऑस्ट्रेलिया से मुलाकात थी, उसमें बोला था क्या विशेषता है, उनकी विशेषता सुनाई थी कुछ,
जो पालना हम साकार में नहीं ली थी, बिना पालना लिए अच्छे से,
बिना सहयोग के, बाप के बिना किसी सहयोग के, बाप के संबंध संपर्क से क्या किया, सेवा की वृद्धि की, ये वाली बात थी ना, वो टिकट वाली बात थी, एयर कंडीशन वाला टिकट, सर्टिफिकेट चाहिए और मनी चाहिए, मनी है विजयी भव की, सर्टिफिकेट है हर कंडीशन में सेफ, ये 2-3 बातें वहां पर थी। प्लानिंग भी, ज्यादा वृद्धि भी हो और निर्विघ्न भी हो, स्नेही सहयोगी हो गया, खिटपिट ना हो, वो भी वहां एक बात थी। और बाबा एक शब्द जादू का है, उससे क्या हो जाता है, बाबा शब्द कहो और सदा साथ का अनुभव एक, दूसरा मुश्किल सहज, तीसरा निर्विघ्न और चौथा सदा छत्र छाया के नीचे है। जैसे जादू की कोई रिंग होती है, जैसे कि कोई महामंत्र है, तो ये शब्द ही महामंत्र है या जादू की वस्तु है, मैंने ये कहा था। ये 2-3 बातें वहां पर थी। यहां क्या कहा, यहां पर भी उनकी विशेषता कौन सी है, दूसरे धर्म में थे, थोड़ा टाइम उधर से इधर आ गए, चात्रक है जैसे बाबा ने कहा, दूसरों को भी ला रहे हैं उमंग से यहां पर, यह भी उनकी विशेषता है। तो उधर से इधर आना, एक उस डाली से इस डाली में आ जाना, पहले तो उनकी ये विशेषता सुनाई बाबा ने, उसके बाद में फिर
माइक की भी बाबा है।
हाँ वो लास्ट में फिर ये जो आपने जो बात कही थी कि विनाश हमारा क्या होगा, क्या कहा उनको, बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्या बन जाएगा, टापू बन जाएगा, आधा पानी में आधा नीचे, जो याद में होंगे वो सेफ रहेंगे। अशरीरी होने का अभ्यास और याद का अभ्यास, और वो भी लंबे समय का अभ्यास चाहिए, जिनका ऐसा अभ्यास होगा वो सदा सेफ रहेंगे, वो पहले इधर आ जाएंगे उसके बाद में फिर विनाश होगा। तो दो जो अभ्यास है ना, और लंबे समय का अभ्यास चाहिए। सारी मुरलियां जो आके एक ही बात पे टिकती है, आत्मा और शरीर अलग, सारा मुरली आत्माभिमानी स्थिति में ही हाथ की टिकती है। जितना ज्यादा अव्यक्त वाणियों का चिंतन करो गहराई से, पता चलता है ये बस आत्माभिमानी ही एकमात्र है। बार 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 आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना, योग में शरीर से अपने आप को अलग करना, यही मुख्य अभ्यास है। तो वो एक बात ऑस्ट्रेलिया वालों को कही। और भी कौन सा पॉइंट है वहां पे ऑस्ट्रेलिया के लिए? हाँ, फिर वॉइसलेस और वायरलेस वाली बात है, कौन इसको कैच कर पाएगा, डायरेक्शन, आवाज किसको आएगी, डायरेक्शन किसको मिलेगा, जो वॉइसलेस का सेट जिसके पास है उसी को आवाज आएगी, डायरेक्शन आएगा और वही आएंगे इधर, बाकियों को नहीं आएगा। सूल साधन कुछ काम नहीं करे, बुद्धि की लाइन क्लियर और अशरीरीपन, ये दो चीजें होगी, मतलब कनेक्शन जितना वॉइसलेस है तभी हो सकता है। वॉइसलेस अर्थात निर्विकारी, वॉइसलेस अर्थात पवित्र, आज भी बोला पहली पहली बात है पवित्रता, आज की साकार मुरली में है ना, पहली पहली बात है पवित्रता, हाँ दो तीन बार पवित्रता की बात आई है। अपवित्र है वो दिल पर नहीं चढ़ सकते, जिनमें विकार है वो बाप
एक बार कहा याद और पवित्रता,
याद और पवित्रता। तो ये
डेड साइलेंस,
फिर लास्ट में जो बाबा ने उदाहरण जो दिया है कि माइक निकालो एक, पर उदाहरण बहुत अच्छा इलेक्शन का देखा, कितना जबरदस्त उदाहरण दिया है कि इलेक्शन में क्या होता है, पहले एक दिन में एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, उसके पहले जितना करना है करो। तो यहां पर भी पहले तुम दो काम दिए, पहले तुम माइक निकालो, माइक तो निकालो परंतु बाद में डेड साइलेंस हो जाएंगे। इस तरह का उदाहरण दिया है बाबा की, जो भी उदाहरण अगर देखो ना, इतने टॉप लेवल के उदाहरण है वो। जैसे आज भी उधर सुबह की क्लास में जो डॉक्टर कुमुद बहन ने जो मुरली पढ़ी, उसमें इतने सारे अलग 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 उदाहरण दिए बाबा ने, अलग अलग अलग। जैसे दादी से बात करते हो, पहले आंधी आती है इसका मतलब अभी बारिश आने वाली है, मतलब इनका जो तपस्वियों का रूप देखकर आगे क्या होने वाला है आपको समझ में आ रहा है, वो ये उदाहरण वहां दिया। कंगन का कहीं उदाहरण दिया है, तो कहीं एक एक सितारे में दुनिया है इसका उदाहरण बाबा ने कहीं दिया हुआ है, अलग 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 रमणीकता से सारी मुरलियों को, पर उस रीति से अध्ययन करना है, उसमें हमको थोड़ी रमणीकता भी लगे तो उसको थोड़ा, एक मिनट बताना, इसको हम सबसे पहले तो जो स्टडी है हमारी, इसकी जो स्टडी होगी ना वो, हाँ ये एक बात भी रहेगी, हमारा घर है मधुबन, साकार घर मधुबन, निराकार घर परमधाम वो है, और ऑस्ट्रेलिया है दफ्तर, दफ्तर में गलत माना जाता है अगर किसी से प्यार हो गया तो, काम चलाओ और न्यारे हो जाओ, बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे, काम काम किया और न्यारे होगा, स्नेह रखना है मधुबन से अपने घर से। तो साकारी घर ये है, निराकारी घर वो है ये। तो ये जो भी इस तरह की सारी जो मुरलियां है, इसमें बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है, सबसे पहले तो मनोविज्ञान छिपा हुआ है, और हमारी जो जीवन की उलझने हैं, समस्या है, उसका कहीं ना कहीं, कहां ना कहीं कोई ना कोई समाधान है। हम उसको इस रीति से जाए कि वो मुझे वहां ढूंढना है, एक जिज्ञासा वृत्ति, जैसे छोटा बच्चा होता है ना सागर के किनारे, वो सीप इकट्ठे करता है, वो पत्थर ले लेता है वहां से, उसको बहुत अच्छा लगता है, पर कोई बड़ा देखेगा तो इसमें क्या है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो जिज्ञासा वृत्ति खत्म हो चुकी है। जिज्ञासा जगाना है अपने अंदर, भूख चाहिए ज्ञान की, योग की, अनुभूति की, उस प्यार का अनुभव करने की, ये अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करनी, ये जब तक नहीं होगी तब तक इसका कोई रस नहीं होगा। नहीं तो ऐसी कितनी मुरली आई, कितने संडे आए और कितने संडे की मुरलियां गई, हमने क्या किया, गए और सुबह सुना हो गया काम पूरा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा या फिर उससे ज्यादा से ज्यादा लिखा या उससे ज्यादा से ज्यादा उसको रिवाइज किया थोड़ा या उससे ज्यादा थोड़ी चर्चा की, पर क्या वो हमारे जीवन का अंग बन गया है, स्वरूप में ला जाना आ जाना, वो नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है, उस कारण को ढूंढो, जो यहां बोला ना कारण को ढूंढो और क्या करो उसका निवारण करो, ये जो बात है इसकी आवश्यकता है। तो कल तो ये मुरली सुनेंगे सब, इसमें से फिर जो प्रैक्टिकल मतलब होमवर्क निकालने वाली जो पॉइंट है वो एक तो है कि रूलिंग पावर कहां तक, इसको चेक करने के लिए कहां है बाबा रूलिंग पावर किस पे, मन बुद्धि संस्कार पर। उसमें भी सूक्ष्म में जो होमवर्क है मुख्य वो है कि मन मनमत कहां कहां आ रहा है, जो मैंने कहा ना तीन बातें सेपरेट करनी है, श्रीमत मनमत और परमत, ये एक होमवर्क। दूसरा होमवर्क है कि बुद्धि हलचल में कब कब आती है उसकी एक लिस्ट, कौन कौन सी परिस्थितियां है जब मैं हलचल में आता हूं, पहले से अभी परिस्थितियां है नहीं परंतु अनुभव के साथ हम लिख सकते हैं ना कि ये परिस्थितियां कब, जैसे किसी ने मेरा अपमान किया तो मैं हलचल में आता हूं, किसी ने मुझे कह दिया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, जैसे हम रोज टाइम पे आते हैं 10 साल से टाइम पे आ रहे ड्यूटी पे, एक दिन 10 मिनट किसी ने कह दिया ये तो हमेशा ही लेट आता है, अभी इस वाक्य का क्या असर होता है, पावरफुल वाक्य है ये, हम रोज ही टाइम पर आते हैं और एक दिन नहीं आए और किसी ने कह दिया ये हमेशा ऐसा करता है, इसका हमारे ऊपर क्या असर होता है, ये भी एक हलचल है। तो हलचल में हम कहां कहां आते हैं, मिलावट कहां कहां होती है, तीसरा होमवर्क। चौथा होमवर्क कौन कौन से संस्कार है मेरे जो नाच नचाते हैं, उसमें होमवर्क मुख्य है गिरती कला वाले कौन कौन से संस्कार मुझमें। और फिर मुरली जो है, मुरली के लिए प्यार वाली जो बात कही ना, ऐसी मुरली जो माया को सरेंडर कराने वाली मेरी मुरली है, मतलब अध्ययन मनन चिंतन पठन पाठन सब कुछ आ गया उसमें, वो एक। और जो लास्ट में अभ्यास जो दिया है बाबा ने, अशरीरीपन का अभ्यास और दूसरी कौन सी बात है, एक अशरीरीपन और एक और एक अभ्यास यहां दिया है ना, एक की लगन में मगन, संकल्प मतलब शरीर छोड़ने का, ये भी एक होमवर्क दिया है, स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे जब चाहो तब, ये भी एक अभ्यास है शरीर को छोड़ने का अभ्यास, कि मैं आत्मा इस तन से निकल रही हूं, अभी डेड हो गई है, इसको ले जा रहे शरीर से डिटैच होने के लिए, ये भी अभ्यास स्वेच्छा से, वो तुरंत नहीं आएगा डायरेक्ट, अभी से अभ्यास चाहिए। तो हर मुरली से क्या करना है, सबसे पहले तो पढ़ना चिंतन करना, फिर उसमें से होमवर्क निकालना। अभी होमवर्क तो निकल गया, 3-4 हमने होमवर्क निकाले, जब हम इसको कल फिर से सुनेंगे फिर से उस होमवर्क को रिवाइज करना और फिर दिन भर में चेक करते रहना, ये मेहनत का काम है, पर बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत है इसमें, यही नहीं चाहती आत्मा बस, पुरुषार्थ तो तीव्र करना है परंतु इस तरह की जो मेहनत है ना, मतलब कोई कहे कि ये पत्थर यहां से उधर डाल दो, ये तो बहुत आसान है, बाबा को स्थूल सेवाधारी नहीं चाहिए, बुद्धि को सूक्ष्म बना देना, ऐसी सूक्ष्म और रिफाइंड बुद्धि ही विश्व की सेवा कर सकती है। अभी तो बाबा को 100 सेवाधारी कहो तो 200 आ जाते, हाँ वही 100 मांगो तो 200 आ जाएंगे, स्थूल सेवाधारी उसको नहीं चाहिए, बाबा को चाहिए सूक्ष्म सेवाधारी, सूक्ष्म सेवाधारी अंकर जिनकी स्थिति सूक्ष्म है और बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट है, उसके महावाक्य स्पष्ट है, उसका अर्थ शब्दार्थ भावार्थ व्याख्यार्थ वाक्यार्थ और गुणार्थ जिसको कहते हैं गुड़ अर्थ जो है एक एक वाक्य का, वो बुद्धि में अगर स्पष्ट है ऐसे सेवाधारी उसे चाहिए और वैसे हमें बनना है। मंजिल तो बहुत ऊंची है पर होगा। ओम शांति।